सर छठवी लेक्चर नंबर 7। ओम नमः सिद्धेश्य, ओम नमः सिद्धेश्य, ओम नमः सिद्धेश्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सवसाऊणं, नमियूणनंतजिणं, अनंतनाणेन दिठसवट्ठं, कम्मपदे सविहत्तिं वोच्छामि जहागमं पयदो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधौला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। छठवीं पुस्तक जो अभी हम प्रदेश विभक्ति नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 43 पर आ गए, 43। अब अपने वृद्धि विभक्ति का विषय चल रहा है। वृद्धि विभक्ति कौन सी वृद्धि होती है, याद है? वृद्धि, हाँ, असंख्यात भाग वृद्धि और असंख्यात भाग हानि ही होती है, अन्य कोई वृद्धि हानि नहीं है यहाँ पर। तो उसमें हमने देखा था समुत्कीर्तन यानी होती है कह दिया था, फिर स्वामित्व बताया था। तो किसके होती है, तो किसी भी समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि के होती है। फिर उसका काल देखा था कि जघन्य एक समय और उत्कृष्ट पल्ले का असंख्यात भाग, जो भुजगार का और अल्पतर का देखा था। भुजगार कहो या अल्पतर कहो, जो हानि का प्रमाण है वो तो सर्वत्र असंख्यात भाग वाला ही है। इसलिए जैसे भुजगार का कथन आया था काल का और अंतर का, वैसे यहाँ पर भी आएगा। और अवस्थित विभक्ति का उन्होंने बताया जघन्य एक समय और उत्कृष्ट 7-8 समय, वहां तो केवल संख्या समय इतना ही कह दिया था।
अंतर्मूर्त भी बताया था,
हाँ, अंतर्मूर्त है वो
उपशम
श्रेणी की यानी 11वें गुणस्थान की अपेक्षा। अब हम यहाँ अंतर देखेंगे। आज ये जीव एक जीव की अपेक्षा ही बात चल रही, अंतर के एक जीव की अपेक्षा अंतर। तो यहाँ जो तीसरी लाइन में यहाँ शुरू होता है अंतरानुगम की अपेक्षा, ये वृद्धि अनुगम, हाँ, चौथा नंबर का है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश। ओह से मौनीय की असंख्यात भाग वृद्धि और असंख्यात भाग हानि का जघन्य अंतर एक समय है, और उत्कृष्ट अंतर पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण है। ये कैसे निकाला होगा उन्होंने,
जो काल बताया है उसके,
जो काल है ना भुजगार का काल है वो अल्पतर का अंतर कहलाएगा, अल्पतर का काल है वो भुजगार का अंतर होगा, वो पल्ले के असंख्यात भाग। अवस्थित विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण है, ये भी पहले हमने देखा था। अब आदेश से नारकियों में मौनीय की असंख्यात भाग वृद्धि और असंख्यात भाग हानि का अंतर ओघ की तरह है। एक जीव की अपेक्षा बात चल रही है, नाना जीवों के लिए तो सदाकाल बताया था उन्होंने, एक जीव की अपेक्षा बात हो रही है ना यहाँ पर। ओग की तरह नहीं, कितना पल्ले का असंख्यात होगा,
एक समय और पल्ले का, एक समय,
हाँ, एक समय मिनिमम, और अधिक से अधिक पल्ले का असंख्यात होगा। अवस्थित का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर
कुछ
कम 33 सागर है, वहाँ कितना देखा था हमने
असंख्यात
लोक प्रमाण, वो सामान्य में ओग में घटित होगा, तिरंचों में भी घटित होगा, नारकियों में उनकी अपनी अपनी स्थिति में लेना है। इसी प्रकार सब नारकियों में जानना चाहिए, इतना विशेष है कि अवस्थित का उत्कृष्ट अंतर, कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है, ये ख्याल में नहीं, एक बार होना और फिर दोबारा आयु के अंत में हो जाए अवस्थित, तो ये अंतर कहलाएगा। तिर्यंचों में मोनी की असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थित का अंतर ओघ की तरह है, क्योंकि वो तिर्यंचों में तो घटित होता है असंख्यात लोगों। इसी प्रकार तीन प्रकार के पंचेंद्रिय तिर्यंचों में जानना चाहिए। इतना विशेष है कि अवस्थित का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी स्थिति प्रमाण है। वहां तो असंख्यात लोग घटित नहीं होगा पंचेंद्रियों में। इसी प्रकार तीन प्रकार के मनुष्यों में जानना चाहिए। कौन से तीन प्रकार? सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य। हाँ। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में मोनी की असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थिति का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त, क्योंकि अंतर्मूर्त प्रमाण ही इसकी काय स्थिति है। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्तकों में जानना चाहिए। देवगति में देवों में मुनि की असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थित का अंतर नारकियों के समान है, और नारकियों में बताया ओग के समान है। तो जगह ने एक समय उत्कृष्ट पल्ले का असंख्यात होगा। इसी प्रकार भवनवासी से लेकर सर्वार सिद्धि पर्यंत जानना चाहिए। इतना विशेष है अवस्थित का जगन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। ये तो हमने सर्वत्र देखा था, नारकियों में भी देखा था। इस प्रकार अनाहारी पर्यंत जानना चाहिए। विशेषार्थ, भुजगार प्रदेश विभक्ति का कथन करते समय भुजगार अल्पतर और अवस्थित प्रदेश विभक्ति का जिस प्रकार एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल बतलाए है, उसी प्रकार यहाँ भी असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थित प्रदेश विभक्ति का ओह व आदेश से एक जीव की अपेक्षा अंतरकाल जानना चाहिए। उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है, इसलिए यहाँ पृथक पृथक घटित करके नहीं लिखा। क्यों नहीं? क्योंकि एक ही असंख्यात भाग वाली ही एक होती है, अन्य अन्य वृद्धि जहाँ होती है अन्य किसी प्रकरण में, तब वहाँ हम उसके अनंत भाग है या जो कुछ है, जैसे हमने अनुभाग में देखे थे, वहाँ तो छह प्रकार की होती है, तो वहाँ तो विशिष्ट वृद्धि के लिए क्या अंतर है, क्या काल है, उसको बताया था। अब नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचयानुगम से निर्देश दो प्रकार का है। ये जो वृद्धि वाला प्रकरण है उसमें पांच नंबर का नियोग है। वृद्धि विभक्ति इसका नाम था ना, वृद्धि विभक्ति। अब नाना जीवों की अपेक्षा जो भंग कहेंगे, तो ओघ में कितने भंग हो गए? ओघ में वृद्धि के असंख्यात भाग, असंख्यात भाग हानि और अवस्थित, तो सदाकाल जो होते हैं तो उसमें कोई भंग नहीं होंगे। आदेश की अपेक्षा जहां अवस्थित होगा नहीं होगा उसकी बात करेंगे, उसको भंग पड़ेंगे। नाना जीवन की बात चल रही नहीं यहाँ पर? देखो, ओघ और आदेश। ओघ से मोनी की असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थित विभक्ति वाले जीव नियम से पाए जाते हैं, और उनकी संख्या भी हमने हरेक के अनंत देखी थी, तो ये सारे ही ध्रुव रूप से है, तो उसमें कोई अन्य अन्य भंग हो गए ही नहीं। इसी प्रकार सामान्य तिर्यंचों में जानना चाहिए। अब वेरिएशन कहाँ होगी? मनुष्य देव तिर्यंचों में, मनुष्य देव और नारकी में। आदेश से नारकियों में मोनी की असंख्यात भाग वृद्धि और असंख्यात भाग हानि वाले जीव नियम से होते हैं। काल में हमने उसको सदाकाल देखा था और अंतर में अंतर नहीं है देखा था, और ये हमेशा ही नाना जीव पाए जाएंगे, असंख्यात ये भी होगे, असंख्यात वो भी होगे, परंतु अवस्थित वाले कभी होगे भी और नहीं भी होगे, और होगे तो एक होगा या अनेक होगे, इस तरह से वहां तीन भंग होगे। वहां पर कदाचित अनेक जीव हानि और वृद्धि वाले और एक जीव अवस्थित विभक्ति वाला होता है, कदाचित अनेक जीव हानि और वृद्धि वाले और अनेक जीव अवस्थित विभक्ति वाले होते हैं। तीन भंग हो गए नहीं, हम एक तो नियम से पाए जाते हैं वो एक भंग, और बाकी और दो भंग। इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचेंद्रिय तिर्यंच, तीन प्रकार के मनुष्य, सामान्य देव और भवनवासी से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में जानना चाहिए। मनुष्य अपर्याप्तकों में उक्त सब पद विकल्प से होते, क्योंकि वो मार्गणा ही सांतर है, तो जब भी वो मार्गणा में कोई जीव होगे तो उसमें सभी विकल्प संभव है, एक और अनेक वाले और फिर कॉम्बिनेशन वाले, तो आठ भंग हो गए वहां पर। इसी प्रकार अनाहारी पर्यंत जानना चाहिए। विशेषार्थ, ओग से तीनों प्रदेश विभक्ति वाले नाना जीव सदा है। क्या हुआ, कितने हो गए? हाँ हाँ हाँ, तीन। ये सभी सभी ये है ना, बराबर है। सभी जो विकल्प से होते हैं, तो सभी जो विकल्प से होते हैं, हमने कितने देखे? तीनों विकल्प से, तीन त्रिक नौ त्रिक 27 माइनस से 26 हो जाएंगे, बराबर। हमने वो पहले एक अनेक वाले आठ लगाए थे, नहीं समझे? नहीं, ध्रुव भंग इसमें तो कोई भी ध्रुव होगा नहीं। हाँ, यानी इसका एक लेना, उसका एक लेना, और उसके साथ वो कॉम्बिनेशन लेना, परंतु यहाँ तो तीन है ना विकल्प उसके। विशेषार्थ, ओग से तीनों प्रदेश विभक्ति वाले नाना जीव सदा है, अतः असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थित विभक्ति वाले जीव नियम से है, यह कहा। सामान्य तिर्यंचों में भी ओग प्ररूपणा अविकल बन जाती है, इसलिए उनके कथन को ओग के समान कहा। नारकियों में असंख्यात भाग वृद्धि और असंख्यात भाग हानि वाले जीव सभी नियम से है, केवल अवस्थित विभक्ति वाले जीव कभी नहीं होते, कभी एक होता है और कभी अनेक होता है, इसलिए तीन भंग हो जाते हैं। आगे और भी मार्गणाएं गिनाई है, उनमें भी यह व्यवस्था बन जाती है, इसलिए उनमें भी सामान्य नारकियों के समान तीन भंग कहे हैं। मनुष्य लब्धि अपर्याप्त यह सांतर मार्गणा है, अतः इसमें तीनों पद भजनीय हैं। इनके कुल भंग 26 होते हैं, खुलासा अनेक बार किया है, उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए। पहले आई थी ना बात, यानी जो जिसका असंख्यात भाग वृद्धि वाला, अन्य दोनों हो गए ने और ये अकेला होगा, हो गए तो एक होगा या अनेक हो गए, फिर हर एक के अपने अपने लगाना, एक अनेक, फिर दो दो के कॉम्बिनेशन और तीन तीन के कॉम्बिनेशन। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक अपने अपने पदों के अनुसार और सांतर निरंतर मार्गणाओं के अनुसार जहां जितने भंग संभव हो घटित करके जान लेना चाहिए। अब भागा भाग, ये अनुयोग नंबर 6, वृद्धि का अनुयोग 6। भागा भाग इन्हें असंख्यात भाग वृद्धि वाले कितने भाग प्रमाण है, आने वाले कितने भाग प्रमाण है और अवस्थित कितने भाग प्रमाण है। तो निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश। ओह से मुनि की अवस्थित विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग प्रमाण है, असंख्यात वे भाग प्रमाण है, वे कम है ना, असंख्यात भाग। असंख्यात भाग वृद्धि वाले जीव सब जीवों के कितने भाग प्रमाण है, तो कहते संख्यात वे भाग प्रमाण है। और असंख्यात भाग हानि वाले जीव सब जीवों के कितने भाग प्रमाण है, संख्यात बहुभाग प्रमाण है। अथवा यानी दोनों ही प्रकार से कथन है। पहले किसको बोला था, भाग वृद्धि वालों से वो संख्यात्वा भाग और भाग हानि वाले संख्यात बहुभाग। अब दूसरी पद्धति से बताते हैं, अथवा असंख्यात भाग हानि वाले जीव कितने भाग प्रमाण हैं, तो उनको संख्यात विभाग कहा, और असंख्यात भाग वृद्धि वाले संख्यात बहुभाग है। यह मूल उच्चारणा का पाठ है। हाँ, दोनों ही उसमें कथन दोनों ही आते हैं। हाँ, फिर भी कहते हैं इन दोनों पाठों में जानकर अविरोध को घटित कर लेना चाहिए। इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिए। यानी कभी असंख्यात भाग वृद्धि वाले जीव अधिक हो गए, कभी वो ज्यादा हो गए, क्योंकि हमने देखा ना वृद्धि 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 करते रहेंगे, कभी हानि 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 करते रहेंगे, तो उनकी संख्या का इसलिए अविरोधपना बताया। इस प्रकार सब नारकी सब तिर्यंच सामान्य मनुष्य मनुष्य अपर्याप्त सामान्य देव और भवनवासी से लेकर अपराजित तक के देवों में जानना चाहिए। जहां संख्यात है वहां संख्यात्वा भाग की करेंगे बात। यहां अवस्थित को असंख्यात्वा भाग कहा था, जहां मूल मार्गणा में जीव ही संख्यात है उसको संख्यात्वा भाग कहेंगे। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में मुनियों की असंख्यात भाग हानि और अवस्थित विभक्ति वाले जीव सब जीवों के कितने भाग प्रमाण है, ये संख्यात्वे भाग प्रमाण है। और असंख्यात भाग वृद्धि वाले जीव सब जीवों के कितने भाग प्रमाण है, संख्यात बहुभाग प्रमाण है। वृद्धि और हानि में विपर्यास भी है, यानी वृद्धि का प्रमाण और हानि का प्रमाण इसमें दोनों ही कथन आते हैं। कभी वृद्धि के ज्यादा होगे, कभी हानि के ज्यादा होगे। अर्थात दूसरे पाठ के अनुसार असंख्यात भाग हानि वाले जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण है और असंख्यात भाग वृद्धि वाले जीव संख्यात्वे भाग प्रमाण है। इसी प्रकार सर्वार्थ सिद्धि में जानना चाहिए, इस प्रकार अनाहारी पर्यंत जानना चाहिए। विशेषार्थ राशियां तीन है, असंख्यात भाग वृद्धि प्रदेश विभक्ति वाले जीवों के प्रमाण की बात चल रही है। पहले जो पद निक्षेप हमने वृद्धि का और हानि का प्रमाण देखा था, अब यहाँ विशिष्ट वृद्धि वाले और विशिष्ट हानि वाले जीवों की संख्या की बात है। तो असंख्यात भाग वृद्धि प्रदेश विभक्ति वाले, असंख्यात भाग हानि प्रदेश विभक्ति वाले और अवस्थित प्रदेश विभक्ति वाले, इनमें से कौन कितने भाग प्रमाण है इसमें मतभेद है। एक उच्चारण के अनुसार तो असंख्यात भाग वृद्धि वाले जीव थोड़े है और असंख्यात भाग हानि वाले जीव अधिक है, और मूल उच्चारणा के अनुसार असंख्यात भाग हानि वाले जीव थोड़े हैं और असंख्यात भाग वृद्धि वाले जीव बहुत है। वीरसेन स्वामी कहते हैं जिससे इन दोनों पाठों में विरोध न रहे इस प्रकार इसकी संगति बिठानी चाहिए। हमारा ख्याल है कभी क्षपित कर्मांश वाले जीव अधिक हो जाते होंगे और कभी गुणित कर्मांश वाले जीव थोड़े रह जाते होंगे, तथा कभी इससे उल्टी स्थिति भी हो जाती होगी मालूम होता है। इसी कारण से दो उच्चारणाओं में दो पाठ हो गए होंगे। वास्तव में देखा जाए वे दोनों पाठ एक दूसरे के पूरक ही है, विरोध नहीं कहते, पूरक है। परंतु इन दोनों दृष्टियों से कथन करते समय अवस्थित विभक्ति वाले जीवों के कथन में कोई अंतर नहीं पड़ता, ये बात मूल है। वे दोनों अवस्थाओं में एक से रहते हैं। आगे सब नारकी आदि जो और मार्गणाएं गिनाई है उनमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए, इसलिए उनके कथन को ओग के समान कहा है। परंतु मनुष्य पर्याप्त मनुष्यनी और सर्वार्थ सिद्धि के देव संख्यात है, इसलिए वहां अवस्थित विभक्ति वाले भी सब जीवों के संख्यात्वे भाग प्रमाण कहे हैं। शेष कथन पूर्ववत है। इसी प्रकार आगे की मार्गणाओं में भी यथा योग्य व्यवस्था जानकर भागा भाग कहना चाहिए। ये तो आसान है। हाँ, देने अनेक अलग अलग उच्चारणाएं हो सकती है। उच्चारण जैसे हम टीका देखते हैं, टीकाएं अनेक होती है ना, तो इसको उच्चारणा कहते हैं। मूल सूत्र पर जो हमने देखे ना, उच्चारणाचार्य, अलग अलग उच्चारणा करने वाले होते थे आचार्य, तो दो अलग अलग उच्चारणा हो। नहीं, उच्चारणाचार्य नाम नहीं, जैसे टीका कहते हैं और टीकाकार आचार्य, हम कहें तत्वार्थ सूत्र के अमुक टीका में ये कथन है, दूसरी टीका में दूसरा है, ऐसा अगर हम कहेंगे, वैसे यहाँ एक उच्चारणा में ये बात है और दूसरी उच्चारणा में ये बात है। अच्छा, तो यहाँ मूल उच्चारणा और फिर उच्चारणा के ऊपर उच्चारणा, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, बप्पदे वो तो पहले हमने पहले इसमें पढ़ा था ना, धवला में भी पढ़ा था, और उच्चारणा किसको कहना है उसकी डिटेल में बात देखी थी हमने। सूत्र होते हैं, वार्तिक होते हैं, उच्चारणाएं होती है, टीकाएं होती है, जैसे ये राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक, उसको वार्तिक कहा, और फिर अन्य अन्य जो टीका है उसको टीका कहा। तत्वार सूत्र का वो वार्तिक हुआ और ये टीका हुई, उसमें कुछ भेद है। अब हम आगे का अनुयोग देखेंगे। परिमाणानुगम, अभी तो भागा भाग, कितने भाग प्रमाण है इतना ही बताया, अब उनकी संख्या कितनी है वो बताएंगे। ये अनुयोग नंबर 7, वृद्धि वाला, वृद्धि विभक्ति का अनुयोग 7। परिमाणानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मुनि की असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि, और अवस्थित विभक्ति वाले जीव कितने हैं, इन जनरल हमने देखे थे, तो अनंत है। इसी प्रकार सामान्य तिर्यंचों में जानना चाहिए। आदेश से नारकियों में मुनि की असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि, और अवस्थित विभक्ति वाले जीव कितने हैं, तो कहते असंख्यात है। परंतु वहां ऐसा समझना हो, ऐसा कभी कभी अवस्थित वाले हो गए भी नहीं, ऐसे भी बात देखिए ना, हो गए तो एक भी होगा, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, असंख्यात। इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचेंद्रिय तिर्यंच, सामान्य मनुष्य, मनुष्य अपर्याप्त, यानी जहां असंख्यात हो सकते हैं, ऐसे मार्गणाएं लिए। सामान्य देव और भवनवासी से लेकर अपराजित तक के देवों में जानना चाहिए। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में मुनि की असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि, और अवस्थित विभक्ति वाले जीव कितने हैं, तो संख्यात है, क्योंकि वो मार्गणा ही संख्यात वाले हैं। इसी प्रकार सर्वार सिद्धि में जानना चाहिए, वे भी संख्यात होते हैं। इस प्रकार अनारी पर्यंत जानना चाहिए। विशेषण, परिमाणानुगम में ज्ञातव्य बात इतनी ही है कि, यानी जानने लायक इतनी ही है, ओग से तो तीनों विभक्ति वाले अनंत हैं, यही बात सामान्य तिर्यंचों की है। आदेश से जिस गति की जितनी संख्या है उसी हिसाब से वहां तीनों विभक्ति वाले जीव है। अब क्षेत्रानुगम, वृद्धि अनुयोग के 8वां नंबर का निर्देश दो प्रकार का है। क्षेत्रानुगम की अपेक्षा दो प्रकार का है निर्देश, ओघ और आदेश। ओघ से मुनि की असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि, और अवस्थित विभक्ति वाले जीवों का कितना क्षेत्र है, सर्व क्षेत्र है, जैसे उनकी संख्या कितनी है तो अनंत हमने देखे थे, तो ये तो पूरा क्षेत्र है, क्योंकि एक इंद्रियों में भी वो होते रहते हैं। इसी प्रकार सामान्य तिर्यंचों में जानना चाहिए। आदेश से नारकियों में मुनि की असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि, और अवस्थित विभक्ति वाले जीवों का कितना क्षेत्र है, लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण, जिस मार्गणा का जो क्षेत्र है उसी को वहां कहेंगे। इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचेंद्रिय तिर्यंच, सब मनुष्य और सब देवों में जानना चाहिए।
ये 6/14 और वो नहीं बताया,
कौन सा
6/14 और मारणांतिक, और
मारणांतिक वगैरह स्पर्शन में लेंगे, क्योंकि एट अ टाइम इनकी संख्या एट वर्तमान समय में इनकी संख्या अल्प है। मारणांतिक करेंगे तो भी पूरा वो 6/14 वगैरह राजू कवर नहीं होगा। अतीत काल की अपेक्षा कवर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जीव कभी ना कभी ऊपर गया है या उपवाद करके नीचे आया है, तो पूरा ही 6/14 लेते हैं। वो स्पर्शन में लेते हैं हमेशा, हम क्षेत्र में नहीं लेते उसको, क्योंकि क्षेत्र तो वर्तमान अपेक्षा है और स्पर्शन तो तीनों काल की अपेक्षा आती है, उसमें हम भूतकाल की बात करेंगे। वो बात अभी आएगी आगे। तो हमने देखा ना आदेश से नारकी वगैरह में भी लोक का असंख्यात अभाव, इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचेंद्रिय तिर्यंच, सब मनुष्य और सब देवों में जानना चाहिए, इस प्रकार अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। इनकी संख्या असंख्यात है, कहीं संख्यात है तो मारणांतिक भी करेंगे तो फिर लोक का असंख्यात ही भाग कवर होगा। अब आगे वृद्धि अनुयोग 9 नंबर। अभी स्पर्शानुगम, इसकी अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मोनीय की असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि, और अवस्थित विभक्ति वालों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है, सर्वलोक क्षेत्र का स्पर्शन किया है। क्षेत्र में भी सर्वलोक लिया है तो स्पर्शन में तो लेंगे ही। इसी प्रकार सामान्य तिर्यंचों में जानना चाहिए। आदेश से नारकियों में मुनि की असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि, और अवस्थित विभक्ति वालों ने कितने क्षेत्र का स्पर्शन किया है, लोक का असंख्यात अभाग, ये उनका वर्तमान का स्वस्थान वाला, और त्रसनाली के कुछ कम 6/14 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। ये जो 6/14 लिखा है तो इसमें आप स्पर्शन है, मारणांतिक ले सकते, उपपाद ले सकते हैं। पहली पृथ्वी में स्पर्शन क्षेत्र की तरह है, यानी लोक का असंख्यात भाग। दूसरी से लेकर 7वीं पृथ्वी पर्यंत असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि, और अवस्थित विभक्ति वालों का अपना अपना स्पर्शन कहना चाहिए। अपना अपना स्पर्शन यानी अभी दूसरे नरक की बात करेंगे तो 1/14 कहेंगे, एक राजू नीचे है ना। हाँ, दोनों से बनेंगे। हाँ, एक्चुअली उसको हम उपपाद में हम उसको वृद्धि हानि तो नहीं कह सकेंगे क्योंकि वो तो पहला समय है, तो कंपेयर करने के लिए हमें दूसरा समय चाहिए, तो उपपाद और फिर एकांत अनुवृद्धि शुरू हो जाएगा। परंतु उसके लिए भी वहाँ उपपाद में से एकांत अनुवृद्धि हो जाए तो हम वृद्धि के कहें, वहाँ हानि नहीं होगी। तो मारणांतिक ही ज्यादा घटित होगा उपपाद की भी अपेक्षा। कुछ कम 6/14 हमने देखा। हाँ, और दूसरी से लेकर अपना अपना स्पर्शन कहना चाहिए ने, जितने नीचे है उतने राजू हम कहेंगे, उतने 14। सब पंचेंद्रिय तिर्यंच और सब मनुष्यों में असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि, और अवस्थित विभक्ति वालों का स्पर्शन, लोक का असंख्यात भाग ये वर्तमान में, और सर्वलोक है सर्वलोक में मारणांतिक में ले सकते। देवों में असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि, और अवस्थित विभक्ति वालों का स्पर्शन, लोक का असंख्यात भाग, उनका रहने का अपना, और त्रसनाली के कुछ कम 8 विहारवत का, और कुछ कम 9/14 भाग मारणांतिक के अपेक्षा। इसी प्रकार सौधर्म ईशान स्वर्ग के देवों में जानना चाहिए क्योंकि उनके भी मारणांतिक होगा 9/14 में। भुवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि, और अवस्थित विभक्ति वालों का स्पर्शन, लोक का असंख्यात भाग, इनके अलग से कथन करने का कारण ये है वो स्वयं गमन करे तो 1.5 राजू तक जाते हैं पृथ्वी के ऊपर, और नीचे 2 राजू, इसलिए कहते 14 राजू में से कुछ कम 3.5 भाग, कुछ कम 8 भाग अन्य देव ले जाए तो, और कुछ कम 9 भाग है मारणांतिक के अपेक्षा। ऊपर के देवों में अपना अपना स्पर्शन कहना चाहिए। अपना अपना इसलिए लिखा है कि कौन नीचे जाते हैं नरकों में, कौन नहीं जाते हैं, आनंद से ऊपर के नहीं जाएंगे, ग्रेवेक वाले तो मध्यलोक में भी नहीं आएंगे। इस प्रकार अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए। विशेषार्थ ओघ और आदेश से जिनका जितना क्षेत्र है, तीनों विभक्ति वालों का वहां उतना ही क्षेत्र है, यह पूर्वोक्त कथन का तात्पर्य है। सो ही बात स्पर्शनानुगम की समझनी चाहिए। ओघ से जो स्पर्शन है वह यहाँ तीनों विभक्ति वालों का ओघ से स्पर्शन प्राप्त होता है, और प्रत्येक मार्गणा का जो स्पर्शन है वह यहाँ उस मार्गणा में तीनों विभक्ति वालों का स्पर्शन प्राप्त है। इसलिए अलग अलग प्रत्येक का खुलासा नहीं किया। यानी ओघ से जिसका क्षेत्र है सब जीवों का कितना है उसको वहां कहेंगे, आदेश से यानी मार्गणाओं में कौन सी मार्गणा का कितना क्षेत्र है उसको तीनों विभक्ति वालों का क्षेत्र और स्पर्शन कहेंगे। ये तो स्पर्शन की बात समाप्त हुई अपनी। अब काल बताएंगे नाना जीवों की अपेक्षा। तो ये वृद्धि अनुयोग द्वारा अभी अपना 10 नंबर का। तो नाना जीवों की अपेक्षा कालानुगम से निर्देश दो प्रकार का है। एक जीव की अपेक्षा हमने क्या देखा था, काल, जगन्य तो सर्वत्र एक समय है ही, और पल्ले का संख्या। अब यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा बात कर रहे हैं। तो हमने नाना जीवों की अपेक्षा इनका काल कितना देखा था, सर्वदा काल, हमेशा ही, भुजगार में भी देखा था ना हमने उसे। ओग से मोहनी की असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि, और अवस्थित विभक्ति वालों का कितना काल है, सर्वदा है। एक जीव की अपेक्षा कितना देखा था काल,
ये वृद्धि और हानि का तो एक समय और पल्ले का,
एक समय और पल्ले का संख्या तो
बराबर सात और आठ या नौ समय
संख्या समय एक जीव की अपेक्षा देखा था।
नहीं, आठ या नौ समय देखे थे ना।
हाँ, सात आठ समय।
हाँ।
उसी को संख्यात समय कहा था पहले भुजगार में, और बाकी अभी यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है, तो सर्वदा है। इसी प्रकार तिर्यंचों में जानना चाहिए। आदेश से नारकियों में मुनि के असंख्यात भाग वृद्धि और असंख्यात भाग हानि वाले जीवों का कितना काल है, तो सर्वदा है। ये भी हमने देखा था, आदेश में अवस्थित जो है वो सर्वदा नहीं होते, अवस्थित का काल सर्वदा नहीं होता, एक जीव की अपेक्षा भी नहीं है, और यहाँ तो मार्गणाओं में नाना जीवों की अपेक्षा भी नहीं है। तो अवस्थित विभक्ति वालों का कितना काल है, जघन्य काल एक समय, और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण।
नाना जीव की अपेक्षा असंख्यात इंटू संख्यात सभी, तो पल्ले का असंख्यात भाग भी होगा ना।
नहीं नहीं, वो संख्यात है आवली, और ऐसे कितने जीव करेंगे लगातार, आवली के असंख्यात विभाग, आवली के असंख्यात विभाग, अंतर्मूर्त होता तो वो पल्ले का असंख्यात। इसी प्रकार सब नारकी, क्योंकि सभी के उत्कृष्ट काल नहीं होगा ना,
एक समय।
हाँ। इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचेंद्रिय तिर्यंच, सामान्य मनुष्य, सामान्य देव और भवनवासी से लेकर अपराजित विमान तक के देवों में जानना चाहिए। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में, अभी वहां तो अवली का संख्या तो भाग लिया था,
यहाँ
पे अब मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में असंख्यात भाग वृद्धि और असंख्यात भाग हानि वालों का काल सर्वदा है, जैसे नारकियों में देखा था। अवस्थित विभक्ति वालों का जघन्य काल एक समय है, और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। एक जीव के लिए हमने सात आठ समय देखे थे, एक के बाद एक आएंगे तो भी संख्यात ही होंगे। अथवा अभी दो दूसरा जो कथन हमने पहले भी देखा था, अथवा तीन प्रकार के मनुष्यों में अवस्थित विभक्ति वालों का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, ये क्यों लिखा। उपशम श्रेणी में ग्यारहवें गुणस्थान में जब वो आते हैं तो जितनी सत्ता में उतनी ही रह जाती, वहां कोई खिरने का सवाल नहीं है, कोई उदय है ही नहीं है। दसवें में क्या पोजीशन होगी?
नहीं, दसवें तो नहीं, असंख्यात भाग हानि होती रहेगी ना।
हानि होती चली जाएगी, क्यों? वहां तो बंधन ही है नवा,
गुण श्रेणी
नया बंधन नहीं है, और लगातार हानि 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 चल रही है। ख्याल में आई बात? उपशम श्रेणी के दसवें में भी उदय तो है ना। क्षपक की बात अलग है, क्षपक तो पूर्ण सत्ता में से नाश होता है, परंतु उपशम श्रेणी में सूक्ष्म लोभ का उदय है, तो उसके परमाणु लगातार निर्जरित हो रहे हैं। और ग्यारहवें में जाकर फिर वो जितने हैं उतने रहेंगे। तो यहाँ उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त का, ये मात्र मनुष्यों में ही सिद्ध होगा। इसी प्रकार सर्वार सिद्धि में जानना चाहिए, इतना विशेष है कि सर्वार सिद्धि में, सर्वार्थ हुआ है, सर्वार्थ सिद्धि में अवस्थित विभक्ति वालों का अंतर्मूर्त काल नहीं है, वो कहीं भी और नहीं होगा, मनुष्यों में ही होगा, उपशम श्रेणी वाले के ग्यारहवें गुण स्थान में। मनुष्य अपर्याप्तकों में मुनि की असंख्यात भाग वृद्धि और असंख्यात भाग हानि वालों का जघन्य काल एक समय जैसे अन्यत्र घटित किया था, और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाणे, नाना जीव है ना, ये पर एक जीव की अपेक्षा अंतर्मूर्त कहेंगे, और नाना वो मार्गणा का ही काल पल्ले का असंख्यात भाग है। अवस्थित विभक्ति वालों का जघन्य काल एक समय है, और उत्कृष्ट काल आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण है। इस प्रकार अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए, क्योंकि अवस्थित वाले तो कम होते हैं ना जी। विशेषार्थ, भुजगार विभक्ति में ओह और आदेश से भुजगार अल्पतर और अवस्थित का नाना जीवों की अपेक्षा जो काल घटित करके बतलाए हैं, वही यहाँ क्रम से असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थित का काल ओवर आदेश से घटित कर लेना चाहिए, उससे इसमें कोई अंतर नहीं है, अतः यहाँ पुनः नहीं लिखा, क्योंकि एक ही प्रकार की वृद्धि हानि होती है, तो जो भुजगार का अल्पतर का कथन है वही यहाँ पर घटित होगा। केवल यहाँ सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यों के अवस्थित विभक्ति का उत्कृष्ट काल विकल्प से जो अंतर्मूर्त बतलाया है, सो यह सर्वोपशमना की अपेक्षा बतलाया है, और भुजगार विभक्ति में इसके कथन की विवक्षा नहीं की गई है, वैसे यह काल वहाँ भी बन जाता है, यानी उसमें भी बनेगा, परंतु वहाँ इसकी बात नहीं उठाई थी और यहाँ वो और स्पेसिफिकली बता दिया। अंतरानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, यह अनुयोग नंबर 11। ओह और आदेश, जहां सर्वदा काल कहेंगे उसका अंतर नहीं होगा, नाना जीव है तोग में कोई अंतर नहीं होगा। ओग से मुनि की असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि और अवस्थित विभक्ति वालों का अंतर नहीं है, इसी प्रकार सामान्य तिर्यंचों में जानना चाहिए। आदेश से नारकियों में मुनि की असंख्यात भाग वृद्धि और असंख्यात भाग हानि वालों का अंतर नहीं है, क्योंकि नारकियों में वे सर्वदा पाए जाते हैं, और अवस्थित का हमने देखा था उसमें तो अंतर पड़ता है। अवस्थित विभक्ति वालों का जघन्य अंतर एक समय, और उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण है, जैसे सामान्य से भी घटित किया था उन्होंने। इसी प्रकार सब नारकी, सब पंचेन्द्रिय तिर्यंच, तीन प्रकार के मनुष्य और सब देवों में जानना चाहिए। इतना विशेष है कि तीन प्रकार के मनुष्यों में अवस्थित विभक्ति वालों का उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्त्व है, क्यों? हाँ, क्योंकि ये जो अंतर्मूर्त प्रमाण हमने देखा था, तो उपशम श्रेणी की अपेक्षा से अंतर घटित करना, उपशम श्रेणी किसी ने एक साथ जीव ने की
मांडी,
दूसरे किसी ने नहीं मांडी, तो कितना अंतर पड़ सकता है? पृथक्त्व वर्ष। और क्षपक श्रेणी में
6 महीने
का। और हमें यहाँ 11वें गुणस्थान की बात है, इसलिए वर्ष पृथक। ये नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है। मनुष्य अपर्याप्तकों में असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग हानि वालों का जघन्य अंतर एक समय, और उत्कृष्ट अंतर पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण, जो मार्गणा का अंतर है, और अवस्थित विभक्ति वालों का जघन्य अंतर एक समय, और उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोक प्रमाण है।
या श्रेणी की अपेक्षा नहीं पकड़ेंगे तो मनुष्य में भी असंख्यात लोक ही लेना पड़ेगा ना, श्रेणी नहीं गिनेंगे।
हाँ, श्रेणी नहीं, आपका प्रश्न ऐसा है कि अगर श्रेणी नहीं गिनेंगे तो क्या होगा, जैसे नारकियों में हमने अघटित किया वैसे। हाँ, असंख्यात लोक में, परंतु श्रेणी है तो उसको गिनना भी पड़ेगी ना। पर्याप्त मनुष्य मनुष्य नहीं, और सामान्य मनुष्यों में श्रेणी को लेना, मनुष्य अपर्याप्तों में तो उसका सवाल ही नहीं है, तो वहां असंख्यात लोक लिया। इस प्रकार अनाहारी पर्यंत जानना चाहिए। विशेषार्थ, पहले कानला
संख्यात समय बता रहे, किसके बारे में?
अंतर
नहीं, अंतर के बारे में बात।
हम यहाँ अभी अंतर की बात चल रही है ना। काल तो हमने संख्या समय देखा था, और उपशम श्रेणी की अपेक्षा अंतर्मूर देखा था। काल, नाना जीवन की अपेक्षा काल, और यहाँ कोई भी जो नहीं करने वाला है तो उसको अंतर कहेंगे। तो वो उपशम श्रेणी का जो अंतर है
वही
यहाँ लेना। विशेषार्थ, देखो मनुष्य अपर्याप्तकों में कैसे, अभी हमने तो देखा तो कभी कभी मार्गणा ही नहीं होती। मार्गणा नहीं होती है, अधिक से अधिक उसका उत्कृष्ट अंतर कितना है पल्ले का संख्यात्व भाग, उसके बाद वो मार्गणा वाले जीव तो वहां होंगे, परंतु उसमें अवस्थित वाले होंगे ही नहीं, फिर दोबारा उतना अंतर पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण काल के बाद उसमें अवस्थित वाला कोई जीव होगा, इसलिए इतना बड़ा अंतर बताया। विशेषार्थ, पहले कालानुगम के विषय में जो लिखाए हैं वही अंतरानुगम के विषय में जानना चाहिए। अर्थात भुजगार विभक्ति में नाना जीवों की अपेक्षा तीनों पदों का जो अंतरकाल बताया है वही यहां भी तीनों पदों की अपेक्षा सर्वत्र जानना चाहिए। यही बात हमने भुजगार में देखी, खुलासा वहां कर आए हैं, इसलिए यहां नहीं किया है। केवल यहां मनुष्य त्रिक में अवस्थित विभक्ति का उत्कृष्ट अंतर जो वर्ष पृथक्त्व बतलाया है, सो यह उपशम श्रेणी के उत्कृष्ट अंतरकाल की अपेक्षा कहा है। भुजगार विभक्ति में भी अवस्थित विभक्ति का यह अंतरकाल संभव है, पर वहां इसकी विवक्षा नहीं की गई है, वैसे यह अंतरकाल वहां भी बन जाता है, वहां इसकी बात नहीं उठाई थी। यह भी असंख्यात भाग वृद्धि हानि में यह बात उठाई उन्होंने, यानी यहां पर जो वृद्धि वाले प्रकरण में उन्होंने लिया अवस्थित में, भुजगार अल्पतर अवस्थित में इसकी उन्होंने चर्चा नहीं की थी। भावानुगम की अपेक्षा सर्वत्र औदयिक भाव होता है, यह औदायिक औदयिक करना, और यह वृद्धि अनुयोग अभी 12 नंबर का है, और 13 नंबर पर अल्पभूतव। अल्पभूतव अनुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ये 13 ही तो बताए थे ना इसमें वृद्धि अनुयोग द्वार में, तो निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश। ओह से अवस्थित प्रदेश विभक्ति वाले जीव सबसे थोड़े हैं, हमने देखे थे अनंत है फिर भी सबसे थोड़े हैं, उसको असंख्यात्व भाग प्रमाण बताया था। इनसे असंख्यात भाग वृद्धि प्रदेश विभक्ति वाले जीव असंख्यात गुणे हैं, वो भी अनंत है। इनसे असंख्यात भाग हानि प्रदेश विभक्ति वाले जीव संख्यात गुणे हैं, अथवा हानि से वृद्धि संख्यात गुणी है। दोनों ही विकल्प बताए, वृद्धि से हानि असंख्यात गुणे या हानि से वृद्धि संख्यात गुणे। अर्थात अवस्थित विभक्ति वालों से असंख्यात भाग हानि वाले जीव असंख्यात गुणे हैं और इनसे असंख्यात भाग वृद्धि वाले जीव संख्यात गुणे हैं। इसी प्रकार दोनों विकल्प हमने पहले भी देखे थे। सब नारकी, सब तीर्यंच, सामान्य मनुष्य, मनुष्य अपर्याप्त, देव और भवनवासियों से लेकर अपराजित तक के देवों में जानना चाहिए। यह असंख्यात वाली जितनी मार्गणाएं हैं, अनंत में भी ये प्रमाण घटित होता है और असंख्यात वालों में भी होता है, क्योंकि सबसे थोड़े असंख्यात गुणे और संख्यात गुणे। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में अवस्थित विभक्ति वाले सबसे थोड़े हैं, इनसे असंख्यात भाग वृद्धि वाले जीव संख्यात गुणे। वहां असंख्यात गुणे कहा था, यहाँ संख्यात गुणे। इनसे असंख्यात भाग हानि वाले जीव संख्यात गुणे, अथवा वृद्धि और हानियों का अर्थात अवस्थित विभक्ति वालों से असंख्यात भाग हानि वाले जीव संख्यात गुणे हैं और इनसे संख्यात भाग वृद्धि असंख्यात भाग चाहिए। और इनसे असंख्यात भाग वृद्धि वाले जीव संख्यात गुणे हैं। कहां पर? प्राकृत में देखो, मनुष्य पज्जत मनुष्य निशु सवत होवा अवट्ठी दे, असंख्य ज भाग अवड्डी संख्य ज गुणा, असंख्य ज भाग हानि संख्य ज गुणा। वड्डी हानिनम विवज्जासोवा, वृद्धि और हानियों का विपर्य भी है। अर्थात कहकर इन्होंने बता दिया कि अवस्थित विभक्ति वालों से असंख्यात भाग, इनमें दो ही होते हैं ना, हानि और वृद्धि। इसे संख्यात भाग वृद्धि है ही नहीं, यहाँ पर असंख्यात भाग वृद्धि ही है। असंख्यात भाग वृद्धि वाले जो संख्यात गुणे हैं, इसी प्रकार सर्वार्थ सिद्धि में हैं तथा इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। इस प्रकार वृद्धि अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। इसके पश्चात स्थानों का कथन जानकर करना चाहिए। तीसरे नंबर पर क्या देखा था हमने? वृद्धि के बाद स्थान, स्थान ने उसके अलग अलग भेद, जो प्रदेशों के जो भेद हमने देखे थे असंख्यात, अभी हमने देखे थे ना प्रदेशों के भेद कितने हो सकते हैं, असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि। तो जितने मिनिमम प्रदेश से मैक्सिमम प्रदेश तक होंगे उसके उतने स्थान होंगे। स्थान किसको कहना है? वेरिएशंस, नंबर ऑफ प्रदेशों के जो वेरिएशंस होंगे उसको स्थान कहेंगे। इस प्रकार इन पदनिक्षेप वृद्धि और स्थानों का कथन कर चुकने पर, कर अलग करो, मूल प्रकृति प्रदेश विभक्ति समाप्त होती है। तो क्या हो गया जाए? आप कहते हैं, आपका ऐसा पूछना है, गुणित कर्मांशिक, क्षपित कर्मांशिक प्लस वन, ऐसा नहीं है, उसमें गुणित घोलमान क्षपित घोलमान भी ले लेना। वो कहाँ यहाँ बात उठाई? हमने तो दो हिंट की बात ली, मध्यम वाले मध्यम वाले तो और ज्यादा हो जाएंगे जीव घोल माने ने वो तो चेंज होते रहते हैं, कभी गुणित की ओर बढ़ेंगे कभी क्षपित की ओर बढ़ेंगे, बीच वाले भी है ना, क्षपित और गुणित एकदम लास्ट वाले हमने बताए दो ओर के, यानी जघन्य और उत्कृष्ट।
मैक्सिमम काल बताया है वृद्धि के लिए और हानि के लिए,
एक जीव की अपेक्षा
एक नहीं, वो जब ये एक इंद्रिय से आएगा तभी के पंचेंद्रिय में रहते हुए,
पंचेंद्रिय में रहते हुए भी, क्योंकि योग बढ़ता है ना, पंचेंद्रियों में रहते हुए योग का वेरिएशंस बहुत है, पंचेंद्रिय जीवों में भी योगों की बढ़ोतरी योगों की घटना ये चलता रहता है,
पर इतने काल तक लगातार वृद्धि होती रहेगी,
हो सकता है क्योंकि योगों के अलग अलग स्थान होते रहेंगे तो वृद्धि होती रहेगी।
पलक के असंख्यात में भाग,
हाँ यही तो बताया ना,
नहीं बताया हाँ। पर मानने में नहीं आता,
मानने में नहीं आता लगातार वृद्धि होती चली जाएगी, तो ये क्योंकि योग का योग चलता रहता है ना, हर समय योग हो ही रहा है और योगों का वेरिएशन भी होता रहेगा, किसी एक ही योग में ज्यादा टाइम रहता ही नहीं जी, मैंने कहा दो समय रह सकता है
हाँ।
मैक्सिमम आठ समय रहेगा, परंतु वो समय कितना सूक्ष्म है, तो योग बदलते ही रहेगी। हाँ अभी यहाँ से नया प्रकरण शुरू होता है अपना, उत्तर प्रकृति का। हाँ अभी तक तो मूल प्रकृतियों में मोहनीय इन जनरल बात की थी, अब अलग अलग प्रकृतियों की बात करेंगे अब पहले का जरा आसान लगेगा पढ़ते हैं, उत्तर पयड़ी पदे से विहत्तीय एक जीवेण सामित्तम, उत्तर प्रकृति प्रदेश विभक्ति में एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व को कहते हैं। अब यहाँ उत्तर प्रकृति विभक्त प्रदेश विभक्ति में भागा भाग, जैसे वहां पर हमने देखे थे ना कितने, पहले 22 लिए थे बाद में 4 और बढ़ाए थे, भुजगार वगैरह वगैरह, भुजगार पदनिक्षेप वृद्धि और स्थान, और मूल में 22, तो वहां भागा भाग से शुरू किया था, तो यहाँ कहते भागा भाग, सर्व प्रदेश विभक्ति, नो सर्व प्रदेश विभक्ति, उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति कौमा देना, अनुत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति, जघन्य प्रदेश विभक्ति, अजघन्य प्रदेश विभक्ति, सादी प्रदेश विभक्ति, अनादि प्रदेश विभक्ति, ध्रुव प्रदेश विभक्ति, अध्रुव प्रदेश विभक्ति, एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व, काल अंतर, नाना जीवों की अपेक्षा भंग विचय, परिमाण क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर सन्निकर्ष भाव और अल्पभूत्व, ये 23 संयोग द्वार होते हैं, वहां सन्निकर्ष को नहीं लिया था क्योंकि मूल प्रकृति में किसके साथ सन्निकर्ष करेंगे, तो यहाँ 23 आ गए, इनके सिवा भुजगार पदनिक्षेप वृद्धि और स्थान ये 4 अनुयोग द्वार और होते हैं, यहाँ 27 हो जाएंगे। फिर शंका, यहाँ आदि के 11 अनुयोग द्वारों को छोड़कर कौन सा, पहला भागा भाग, फिर वो हमने क्रम से देखे ये सब, हाँ उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य सादी अनादि ध्रुव और अध्रुव, उसके बाद किसका नंबर है, एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व, अभी सूत्र में क्या पढ़ा हमने,
स्वामित्व की बात है,
एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व को कहते हैं, इस बात पर शंकाकार ने शंका उठाई, क्या आदि के 11 अनुयोग द्वारों को छोड़कर पहले स्वामित्व अनुयोग द्वार ही क्यों कहा, शंका ख्याल में आई ना, उसका समाधान, नहीं क्योंकि वे 11 अनुयोग द्वार इसी स्वामित्व अनुयोग द्वार में गर्भित पाए जाते हैं, इसलिए पहले स्वामित्व अनुयोग द्वार का ही कथन किया है, यानी कौन उस जीव का स्वामी है, उसका स्वामी है ये इसमें बताएंगे। अब इस स्वामित्व का कथन करने वाले सूत्र से सूचित होने वाले 11 अनुयोग द्वारों का कथन करते हैं, चूर्णी सूत्रकारों ने तो बस डायरेक्ट 11वां लिया, तो उसमें जो बाकी सब गर्भित है उसको यहाँ बता देंगे। उन्होंने तो 12वां नंबर लिया ना, ये 11 गर्भित है। तो उसका कथन इस प्रकार है, यहाँ भागा भाग दो प्रकार का है। अभी हमने जो देखे उसमें से ये पहला नंबर है भागा भाग, ये 50 पेज से चलेगा आगे। हाँ। जीव भागा भाग और प्रदेश भागा भाग, क्या कहते हैं? उतने वाले जीव कितने हैं और उसमें प्रदेशों की संख्या की अपेक्षा भागा भाग कितना है, उनमें जीव भागा भाग को आगे कहेंगे, क्योंकि जीव भागा भाग नाना जीव विषयक है, जीव भागा भाग के लिए अनेक जीव चाहिए। तो हमें प्रदेश भागा भाग की बात करेंगे। मूल प्रकृतियों में हमने कैसे की थी प्रदेश भागा भाग, याद है? हाँ, मूल प्रकृति में, हाँ अन्य, हाँ क्योंकि एक मूल में क्या भागा भाग करेंगे, मूल में तो एक मूल प्रकृति है, उसमें तो भागा भाग नहीं होगा। तो इसके लिए वहां पर अन्य कर्मों की अपेक्षा, आठ कर्मों की अपेक्षा भागा भाग कहा था। अब यहाँ उत्तर प्रकृति में तो मोहनी में ही हम भागा भाग करेंगे, मोहनी का जितना अपना माल उसका माल है उसमें कहाँ कितना जाता है वो बताएंगे। तो ये भागा भाग यहाँ शुरू कर रहे हैं, जीव प्रदेश वहां उनमें जीव भागा भाग को आगे कहेंगे, क्योंकि जीव भागा भाग नाना जीव विषयक है, अतः एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व आदि का कथन किए बिना उसके कथन करने का कोई उपाय नहीं है। यानी बाकी सभी एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व काल अंतर वगैरह वगैरह कहने के बाद उसको उठाएंगे जहां उसका नंबर आएगा, अतः उसे रोककर यानी उसका कथन किए बिना उत्तर प्रकृति प्रदेश विषयक भागा भाग को कहते हैं, क्योंकि वह सब अनियोग द्वारों का उत्पत्ति स्थान होने से, कौन सा स्वामित्व जो है, स्वामित्व कहेंगे तो उसमें से सभी अनियोग द्वारों की उत्पत्ति होती है, पहले कहे जाने के योग्य है। या भागा भाग अनियोग, अनियोग हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? उत्तर प्रकृति प्रदेश विषयक भागा भाग को पहले कहेंगे क्योंकि इसमें से अन्य अनुयोग द्वारों की उत्पत्ति होती है। हमें कौन सा, क्यों ऐसा कह रहे हैं? मोनी में जितना माल आता है, जितना परमाणु बनते हैं, वो मोनी में जितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा कितना होता है, हमने पहले देखा था कहाँ कितना माल जा, सबसे मैक्सिमम किस में जाता है? वेदनीय में, उसके बाद मोहनीय में। तो जो मोहनीय के खाते में आया वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, मिथ्यात्व में कितना जाएगा, अनंतानुबंध में कितना, वो सब बात यहाँ बताएंगे। तो ये भागा भाग का पहले कथन करेंगे तो आगे की बात ख्याल में आएगी, क्योंकि वह ने भागा भाग सब अनियोग द्वारों का उत्पत्ति स्थान होने से पहले कहे जाने के योग्य है। उसका कथन इस प्रकार है, उत्तर प्रकृति प्रदेश भागा भाग, ये इतना समझ में आता है ना, उत्तर प्रकृतियों के प्रदेश आने परमाणुओं की संख्या उसमें भागा भाग यानी उसका प्रोपोर्शन किसका कितना है, वो दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट से प्रयोजन है,
ये क्या जघन्य और उत्कृष्ट में प्रोपोर्शन अलग अलग होगा?
जघन्य और उत्कृष्ट में प्रोपोर्शन हो ना, किसका जघन्य है, मिथ्यात्व का जघन्य और फिर अन्य प्रकृतियों का जघन्य।
नहीं, ये जघन्य तो ग्रहण करने की अपेक्षा बात है ना, जो जघन्य प्रदेश ग्रहण,
जघन्य में नरीजरा की अपेक्षा भी आएगी, जघन्य कब किसके होगा वो स्वामित्व में बताएंगे। तो जघन्य हर एक प्रकृति का जघन्य अलग अलग जीव के होगा, उसका स्वामी अलग अलग होगा। अनंत अनुबंधी का जघन्य कोई अन्य होगा, मिथ्यात्व का जघन्य, संज्वलन का जघन्य, अभी उत्तर प्रकृतियों की बात है ना। तो यहाँ निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश, उनमें से यहाँ दंड नहीं चाहिए, उनमें से ओघ से गुणित कर्मांश को विषय करने वाली कर्म स्थिति के भीतर संचित हुए नाना समय प्रबद्धात्मक, बहुत शब्द आए नए हैं, हम भाई देखेंगे इसको, समस्त प्रदेश पिंड को लेकर बुद्धि के द्वारा उसका एक पुंज करके स्थापित करो। जब हम प्रदेश विभक्ति कहते हैं तो सत्ता में स्थित कर्मों की बात होती है, न कि बंधने वाले की। इसलिए क्या कहा, उत्कृष्ट से प्रयोजन है, उत्कृष्ट हमें संख्या चाहिए, तो इसलिए गुणित कर्मांश को लिया। तो पहले में क्या लिया है, गुणित कर्मांश को विषय करने वाली कर्म स्थिति के भीतर संचित हुए। कर्म स्थिति के भीतर क्यों कहा, जो कोई एक विशिष्ट समय में कर्म बांधा है, मैक्सिमम कर्म बांधा है, हम मिथ्यात्व का देखते तो 70 कोड़ा कोड़ी है, तो वो बंधने वाला तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक तो उसकी स्थिति रही ही रही। जब तक वो फिर नहीं जाता 70 कोड़ा कोड़ी के बाद, तब तक अन्य और नए नए समय प्रबद्ध आएंगे, तो उतने काल तक संचित होगा। इसलिए कहते हैं कर्म स्थिति के भीतर संचित हुए, इसका ख्याल में आए कर्म स्थिति क्यों कही। अब क्या कहते हैं, नाना समय प्रबद्धात्मक, नाना क्योंकि एक एक समय में एक एक समय प्रबद्ध है, इसलिए अनेक समय प्रबद्धात्मक, अनेक समय प्रबद्धों से ये कर्म संचित हुए है। समस्त प्रदेश पिंड को लेकर, यानी कोई विशिष्ट कर्म स्थिति काल में जितने नए नए कर्म बंधे हैं, उस सब को इकट्ठा हम कंसिडर करेंगे, खिरेंगे भी कुछ, खिरेंगे भी, परंतु वहाँ हम उसको संचित करेंगे बुद्धि के द्वारा।
तो क्या यहाँ पे मिथ्या तो मैं 70 कोड़ा कोड़ी के नाना समय प्रबद्ध एक साथ हम लोग लेके कंसीडर करेंगे?
हाँ, सभी कर्मों को लेना है, पूरा मोहनीय को लेना है।
बात करते हैं,
हाँ,
तो 70 कोड़ा कोड़ी काल में जितने समय उतने संचित हुए कर्मों की यहाँ बात है।
हाँ, वहाँ उसकी बात है, फिर पढ़ेंगे। देखो, गुणित कर्मांश को विषय करने वाली, गुणित कर्मांश में क्या होता है, हमने देखा था निर्जरा कम होती है और संचय ज्यादा होता है, उसके लिए जो आवश्यक कंडीशंस है वो सब होगी वहाँ। योग में ज्यादा, योग में उत्कृष्ट, योग में अधिक काल तक रहेगा, पर्याप्त कभी ज्यादा करेगा, संकलेश बहुत बार होगा, आयु का बंध जघन्य योग से करेगा, ये जो आवश्यक कंडीशंस यहाँ भी लागू होगी, इसलिए गुणित कर्मांश को विषय करने वाली कहा। दूसरी बात, कर्म स्थिति के भीतर संचित हुए, यानी अनेक लंबे काल तक संचित हुए लेना है, और नाना समय प्रबद्धात्मक, समस्त प्रदेश पिंड को लेकर बुद्धि के द्वारा उसका एक पुंज बना दिया।
पर्टिकुलर,
हाँ, एक ही समय में इतने हुए हैं, क्योंकि ये सत्ता की बात है, एक विशिष्ट समय में कितनी सत्ता होती है, डेढ़ गुना हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण होते, ये तो हमें पता है ना, उसमें वो खिर गए रहे, वो सब कुछ आ गए, बराबर है ना, तो उसको उस प्रदेश पिंड को लेना है।
तो यहाँ कर्म स्थिति का मतलब ये डेट समय प्रबद्ध गुणानी प्रमाण ही लेना चाहिए ना, ये कर्म स्थिति के
अभी
भीतर
अभी हमें तो इतना ही लेना है कि पहले विशिष्ट समय में बंधने वाले भी है उसमें से कुछ परमाणु।
हाँ।
70 कोड़ा कोड़ी के बंधे हुए सभी तो नहीं प्राप्त, उसका अंतिम निषेक है।
हाँ।
किसी के 2 निषेक बाकी है, किसी के 3 निषेक बाकी है, किसी के 4 निषेक बाकी है, तो उसके पश्चात बंधे हुए सारे हैं ना वहां पर, नहीं समझे। हम कर्म स्थिति को छोड़ देते हैं, 6 समय तक बंधे हुए को लेते हैं, तो जो 6 किसी के 6 निशे के टोटल, अभी हम आबाधा काल को छोड़कर बात करेंगे, अभी ये 6 निशेक है तो ये तो अभी अभी बंधे हुए हैं, बराबर है ना, अभी इसके पूर्व बंधे हुए, अभी हम आबाधा को छोड़ ही देते हैं, किसी का एक निषेक गल गया है ऑलरेडी, उसके सत्ता में 5 रहे, किसी के 4 रहेंगे, किसी के 3 रहेंगे, किसी के 2 और किसी का 1, तो सत्ता में इन सब की टोटल है कि नहीं है, ये जिसका एक निषेक रहा है वो कब बंधा था? हम मिथ्यात्व की बात करेंगे तो 70 करोड़ वर्ष पहले, सागर वर्ष पहले। ये बाद में सब बंधे हुए हैं, ये वर्तमान में बंधा हुआ यहाँ पर है। ये तो समझने के लिए हमने आबादा को छोड़कर, अभी आबादा को भी लेते तो भी वो सब घटित होगा, क्योंकि आबादा इसका है वर्तमान का, पूर्व का तो सत्ता में पड़ा है सारा है। तो ये सारे जो सत्ता में पड़े हैं, ये सारा प्रदेश पुंज सत्व जिसको कहेंगे, अभी जैसे बंधने में डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन सत्ता में बताएंगे। बंधने में हमने देखा था ना, 8 कर्मों में बंधने का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, तो हमने देखा था जितना आया उसका अवलिका असंख्यात भाग से भाग देकर एक भाग अलग रखो, उर्वरित के 8 समान भाग करो, फिर जो अलग रखा था उसका बहुभाग बहुभाग एक एक वेद से चले जाओ। तो वेदनीय को पहला दिया, फिर मोहनीय को दिया, फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय को दे दिया, उसके बाद नाम गोत्र को दिया और लास्ट वाला आयु को दिया। अब मोहनीय में जितना आया है उसका आगे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे। तो कहते हैं उसे पृथक स्थापित, सॉरी पुनः उसके अनंत खंड करो। किसके? मोहनी का जो द्रव्य है उसके अनंत भाग करना, अनंत खंड करो। उसमें से एक खंड सर्वघाती प्रकृतियों का भाग है। कितना मिला सर्वघातियों को? एक भाग। और कितने में से? अनंत में से, अनंतवा भाग। तो अनंतवा भाग सर्वघाती को यानी किस किस को मिला?
विद्या तो सर्वघाती है तो।
हाँ लक्ष्मी बेन, अनंतवा भाग किसको मिला? हाँ अनंतवा भाग किसको मिला? कौन सी प्रकृति को मिला? कौन सी सर्वघाती है? मिथ्या तो है और अनंत अनुबंधी और
सर्वघाती स्पर्धक, तो
सर्वघाती प्रकृति की बात चल रही, स्पर्धकों की नहीं। देखो देखो हमने क्या देखा, प्रकृतियां दो प्रकार की है, सर्वघाती और देशघाती। सर्वघाती में सर्वघाती स्पर्धक होते हैं और देशघाती में सर्वघाती भी होते देशघाती। हम यहाँ स्पर्धकों की बात कर ही नहीं रहे, हम प्रकृतियों की बात करेंगे। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर समय में भी जो बंधने वाले में, तो सर्वघाती कौन कौन है? मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यानावरण ये उसमें क्रोधमान माया लोभ लगाना, यानी वो 12 और एक मिथ्यात्व 13। कितने में डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है? डिस्ट्रीब्यूशन कितने में होगा? ऐसा नहीं सर्वघाती की बात नहीं, सर्वघाती देशघाती मिलकर कितने भाग करेंगे हम?
26।
वो बात नहीं है,
नहीं नहीं, आई डिडंट गेट द
क्वेश्चन। मैं ऐसे कहती हूँ कि प्रकृतियाँ कितनी है?
26 प्रकृति है।
कौन सी 26? बंधने वाले कितने एक समय में कितनी बंधेगी? 22
बंधे। अच्छा,
हास्य या रति बंधेगी, शोक या आरती बंधेगी? 3 वेद में से एक वेद एट अ टाइम बंधेगा, ख्याल में है ना? यानी 22 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 22 में से 13 में तो अनंतवा भाग गया, ये ख्याल ले लो। देशघाती और सर्वघाती है, सर्वघाती के 13 हो गए, तो जितना है सत्ता में कहो या बंधने वाला कहो उसका अनंतवा भाग इन 13 में गया, 13 में गया है अनंतवा भाग। अब आगे पढ़ेंगे। हाँ। तो सर्वघाती है ना, उसका सर्वघाती का ख्याल आना चाहिए। सत्ता में जो बंध का प्रोपोर्शन है वही सत्ता वाला रहेगा। सत्ता में तो हम बाद में मिथ्यात्व में से वो सम्यक सम्यक प्रकृति भी बन जाएगी, ख्याल में थे? उसकी बात अभी नहीं उठाई उन्होंने, पहले क्या कहते? देखो एक खंड सर्वघाती प्रकृतियों का, प्रकृतियों में कितनी आ गई उसको मिथ्यात्व और 12 कषाय,
ये अनंत वा भाग है।
हाँ,
टोटल मौनीय का,
टोटल मौनीय का है अनंत वा भाग, और अनंत गुना उसका फल मिल रहा है। हाँ, यानी कितनी संख्या में उससे कोई लेना देना नहीं है, समझ में है। मिथ्या तो सर्वघाती है, वो है सर्वघाती, बनते समय उसके खाते में कितना माल मिलता है, अनंत वा भाग, फिर भी घात कितना करता है,
पूरा घात कर
देता, यानी वो थोड़े परमाणु होकर भी कितना अधिक, ये बात बताना चाहती। बाकी देश घाती है, हासिरती है, वेद है, अन्य जो परमाणु है उनकी संख्या बहुत बड़ी है, परंतु वो कुछ घात नहीं कर रहे, जीव का घात जो निमित्त जो है मिथ्यात्व के परमाणु है, अनंतानुबंधी के परमाणु है उनके खाते में थोड़े परमाणु, और घात कर रहे सबसे ज्यादा। तो अनंत वा खंड, अनंत खंड करो लिखा ना, एक खंड सर्वघाती प्रकृतियों का भाग है, उसे पृथक स्थापित करो, ये निकाल दिया, अनंतवा भाग सर्वघाती को दे दिया, शेष बहुभाग द्रव्य को। अब बहुभाग किस में जाएगा, देशघाती में जाएगा, उस द्रव्य को आवली के असंख्यातवे भाग से भाजित करके एक भाग को भी पृथक स्थापित करो, जैसे हमने पहले 8 कर्मों में किया था वैसा, शेष द्रव्य के समान 2 भाग करो। अब किस में जाएगा, देशघाती में, अभी कौन रहे बाकी,
22 में से 13 गया,
एक संज्वलन रहे 4,
संज्वलन 4,
यानी संज्वलन को हम कषाय कहेंगे और बाकी
नौ कषाय में भी बनने की अपेक्षा तो 3 निकल जाएंगे।
हाँ, बंधने की अपेक्षा भी यहाँ 4 जाएंगे और वहाँ 9 जाएंगे, 9 होगी ना, एक वेद, एक युगल और भैजुगुप्सा, नहीं समझे,
नहीं बनने की अपेक्षा तो सभी में समान जाएंगे ना, उदय की अपेक्षा,
देखो बंद होता ही नहीं एट ए टाइम सबका, हास्यरति का होगा तो शोकरति का नहीं हो रहा है, सत्ता में दोनों के होगे, सत्ता में दोनों के होगे, परंतु सत्ता में जो होगे तो हम उसको एक भाग कर देंगे, हास्य या रति ऐसा मिलकर एक रखेंगे, क्योंकि कभी हास्य बंधा है, कभी सॉरी हास्य और शोक को लेना एक साथ, हास्य और शोक को रखना, क्योंकि हास्य तो बंधेगा या हास्य बंधेगा या शोक बंधेगा, रति बंधेगी या अरति बंधेगी, इसलिए वो युगल के खाते में ऐसा डाल सकते हैं ना। तो जो अभी 2 भाग होने वाले, कौन से, एक कषाय और एक नौ कषाय, देखो आगे बढ़ेंगे, हमने पहले क्या किया, देश एक अनंतवा भाग सर्वघाती को दे दिया, उसको अलग निकाला, अनंत बहुभाग है उसको आवली के असंख्यातवे भाग से भाग दिया, एक भाग अलग निकाला, और जो बाकी है उसके 2 समान भाग किए,
संज्वलन में दिए और नौ कषाय
के शेष द्रव्य के समान 2 भाग करके पुनः पहले निकाल कर पृथक स्थापित किए गए एक भाग में आवली के असंख्यातवे भाग का भाग देकर एक भाग प्रमाण द्रव्य को अलग करके शेष सब द्रव्य को समान 2 भागों में से प्रथम भाग में मिलाने पर कषायों का भाग होता है। ये जरा भाषा अटपटी है, कहना तो वही चाहते। पहले हमने अनंत भाग किए, ये अनंत वा भाग सर्वघाती को दिया, अब इसके जो उर्वरित भाग है
भाग
इसको आवली के असंख्यातवे भाग से भाग दिया,
एक भाग अलग रखा,
भाग देने के बाद जो आया वो अलग रखा, है ना,
बाकी के 2 भाग किए
और इसके समान 2 भाग किए,
कषाय और नौ कषाय के लिए,
एक कषाय को दिया और एक नौ कषाय को दिया। ये जो आवली का असंख्यातवे भाग से भाग देकर जो एक भाग रहा था उसको फिर आवली का असंख्यातवे भाग देंगे, तो फिर एक उसका असंख्यात भाग और बहुभाग, तो ये बहुभाग है वो कषाय में देंगे और एक भाग है उसमें देंगे। ख्याल में आती बातें। तथा इतर भाग भी नौ कषायों का भाग होता है। अब नौ कषायों के भाग को लेकर, नौ कषाय के खाते में जितना आया है उसको लेकर उसमें आवली के असंख्यातवे भाग से भाग दो और एक भाग को अलग करके पृथक स्थापित करो। अभी जितना नौ कषाय का हमने ले लिया द्रव्य, अब ये तो मूल बात कैसे विभाजित होती हमने देखा। अभी नौ कषाय के खाते में जितना आया है उसको आवली का असंख्यातवे भाग से भाग देकर एक बार अलग निकाल दो
और बाकी को पांच में लिख दो।
हाँ, फिर शेष द्रव्य को समान पांच भागों में विभाजित करके इसके भी समान पांच भाग कर दो।
भई जुगुप्सा हाशिर अति अति शोकी।
हाँ देखो, क्योंकि एक वेद तीनों वेदों में से यानी सभी वेदों को इकट्ठा डालेंगे क्योंकि एट ए टाइम एक बनता है।
एक
युगल रखेंगे,
एक युगल
यानी हास्य या शोक,
शोक
रति या अरति,
और भाई
यानी एक हुआ है
एक
वेद
हास्य
या शोक रति या अरति भय और जुगुप्सा, ये पांच भय किए। तो पहला आवली का संख्या तो भाग के भाग देकर एक भाग अलग निकालना और शेष द्रव्य को पांच समान भागों में विभाजित करना। पुनः आवली के असंख्यातवे भाग को विरलन करके पहले घटा करके पृथक स्थापित किए गए द्रव्य के समान खंड करके विरलित राशि पर दो। क्या कहना चाहते हैं अपनी भाषा में? ये जो अलग रखा था ना भाग,
उसका आनंद
इसको आवली के असंख्यातवे भाग से भाग दो,
एक भाग वापस।
उनकी भाषा में आवली का असंख्यातवा भाग विरलित कर दो और इसको उसमें समान रूप से बांट दो। अपनी भाषा में इसी को फिर आवली का असंख्यातवे भाग से भाग दो। उनमें से एक खंड को छोड़कर शेष सब खंडों के समूह को लेकर प्रथम पुंज में जोड़ देने पर वेद का भाग होता है। देखो अभी ये ऐसा जो पूरा नौ कषाय का माल है उसको पहले आवली के असंख्यातवे भाग से भाग दो, एक भाग अलग रखो, जो बाकी है उसके समान पांच भागों में विभाजित कर दो। अभी जो एक भाग रहा था उसको फिर आवली के असंख्यातवे भाग से भाग दो, एक भाग अलग निकालो और बहुभाग वेद में दे दो। पहले समान खंड किए थे ना, उसमें एक बार यहाँ बहुभाग वेद में आ गया, जैसे वहां हमने वेदनीय में दिया था बहुभाग, यहाँ वेद में देना है। क्योंकि यहाँ पर तीनों वेदों की अभेद रूप से विवक्षा है। तीनों वेद आ गए ना इसमें, श्री वेद, पुरुष वेद, नपुसक वेद, अभेद विवक्षा है, इसलिए वेदों में उसका भाग आ गया। पुनः शेष बचे एक खंड को आवली के असंख्यातवे भाग रूप विरलन राशि के ऊपर समान खंड करके दो। अपनी भाषा में जो एक भाग बचा था उसको फिर अभी इसको फिर आवली का असंख्यात भाग का भाग दो, एक भाग अलग निकालो। उनमें से एक खंड को छोड़कर शेष सब खंडों को लेकर दूसरे पुंज में जोड़ देने पर रति और अरति का मिला हुआ भाग होता है। पहला भाग किसको दिया? वेद को, फिर रति, रति अरति को।
ये बहुभाग जा रहा है खाली अनंत असंख्यात। हाँ,
हर बार जो भाग हमने निकाला था उसके आवली के असंख्यात में भाग देकर बहुभाग लेना है। पहला बहुभाग वेद में दिया, बचे हुए एक का बहुभाग अरति रति अरति में दिया। पुनः शेष एक विरलन अंक के प्रति प्राप्त हुए द्रव्य को यानी जो एक भाग बचा था उसको अवस्थित विरलन के ऊपर समान खंड करके दो। अवस्थित विरलन यानी उतना ही उतना विरलन हर बार है, यानी उसी संख्या से हम भाग दे रहे। कौन सी? आवली के असंख्यातवे भाग से, तो फिर उससे भाग देंगे। उनमें से एक विरलन अंक पर दिए गए एक खंड को छोड़कर शेष सब विरलित रूपों पर दिए गए खंडों को लेकर, अपनी भाषा में एक भाग के अलावा बहुभाग को लेकर तीसरे पुंज में जोड़ देने पर हास्य और शोक का भाग होता है। पहला वेद में गया, दूसरा रति में गया, तीसरा हास्य, हास्य और शोक उनका मिला हुआ है। फिर शेष एक विरलन अंक के प्रति प्राप्त हुए द्रव्य को अवस्थित विरलन के ऊपर समान भाग करके दो। यानी फिर उसको अवली के असंख्यात विभाग से भाग दो, एक खंड को छोड़कर शेष बचे हुए बहुत खंडों को चौथे पुंज में जोड़ देने पर भय नो कषाय का भाग होता है। हमें यही बात याद रखनी है, पहले वेद को दिया, फिर रति अरति को दिया, फिर हास्य शोक को दिया, फिर भय को दिया, फिर शेष एक विरल अंग के प्रति प्राप्त हुए द्रव्य को पांचवे पुंज में जोड़ देने पर जुगुप्सा का भाग होता है। ये जुगुप्सा का हमने पहले क्या किया, जितना प्रदेश पुंज है उस सब को अनंत के उसके अनंत भाग किए, एक भाग सर्वघाती में गया यानी मिथ्यात्व और बारह कषाय में गया, बहुभाग है उसको आवली का असंख्यात्व भाग से भाग दिया, एक भाग अलग रखा और बाकी के दो भाग किए, एक कषाय में एक नौ कषाय में, और फिर जो
नौ कषाय में
हाँ वो जो आवली का असंख्यात्व भाग है उसका बहुभाग कषाय में दिया और एक भाग नौ कषाय में दिया, वो दो समान भी किए थे ना, उसमें भी वैसा ही करना है। नौ कषायों का जितना हमें मिला उसमें भी हर बार आवली का असंख्यात भाग का भाग देना और बहुभाग बहुभाग अलग निकालना। तो पहले समान भाग पांच किए, पांच तो समान मिले ही मिले, उसमें इन एडिशन क्या हुआ, पहला बहुभाग वेद में, दूसरा बहुभाग रति अरति में, तीसरा बहुभाग हास्य शोक में, चौथा बहुभाग भय में, और पांचवा जो एक भाग रहा वो जुगुप्सा में, वो ऑलरेडी जो समान हिस्सा था उसमें वो और मिला दिया। इस तरह से नौ कषायों का डिस्ट्रीब्यूशन है। अतः यहाँ ऐसा आलाप करना चाहिए, जुगुप्सा का भाग सबसे थोड़ा है ये कथन होगा फाइनल, उससे भय का भाग विशेष अधिक है, उससे हास्य शोक का भाग विशेष अधिक है, उससे रति अरति का भाग विशेष अधिक है, और उससे वेद का भाग विशेष अधिक है। प्रदेशों की बात चल रही नहीं यहाँ पर, ये डिस्ट्रीब्यूशन ख्याल में आई बात। अब कहते अथवा दूसरे पद्धति से बता रहे, नौ कषाय के समस्त द्रव्य को लेकर उसके पांच समान पुंज करो, ये उसको निकालने का दूसरा तरीका। फिर पहले पुंज में आवली के असंख्यात भाग से भाग देकर एक खंड को घटाकर पृथक स्थापित करो, पुनः इसी भागहार को क्रमानुसार विशेष अधिक करके उसे दूसरे उससे यानी भागहार को बढ़ाते बढ़ाते दूसरे तीसरे और चौथे पुंज में भाग देकर इस प्रकार गृहित सब द्रव्य को पांचवे पुंज में जोड़ देने पर वेद का भाग होता है। ऐसा उल्टा भी समझा रहे हैं, हर एक में इसे भाग देना और थोड़ी थोड़ी संख्या निकालना और वो वेद में गए सबकी, और नीचे के भाग क्रमशः जुगुप्सा भय हास्य शोक और रति अरति भाग होते हैं ऐसा कहना चाहिए। यहाँ पर भी वही आलाप कहना चाहिए क्योंकि दोनों में कोई भेद नहीं है, यानी वो निकालने का तरीका अलग अलग है। आलाप कौन सा, जुगुप्सा में सबसे थोड़ा, भय में विशेष अधिक, इस तरह से जाना। विशेषार्थ, मुनि की उत्तर प्रकृतियों में भागा भाग के दो भेद करके पहले प्रदेश भागा भाग का कथन किया है। प्रदेश भागा भाग के द्वारा यह बतलाया जाता है कि उत्तर प्रकृतियों में किस प्रकृतियों को कितना द्रव्य मिलता है, अर्थात प्रति समय बनने वाले समय प्रबद्ध में से मोनी को जो भाग मिलता है, कितना भाग मिलता है हमने देखा था, वो आठ में विभाजित होगा या सात में विभाजित होगा, वह उसकी उत्तर प्रकृतियों में तत्काल विभाजित हो जाता है। क्या कहा, जब बनता है उसी समय वो अलग अलग उत्तर प्रकृति रूप भी होता है। हमने देखा ना, जिस समय बनता है उसी समय ज्ञानावरण दर्शनावरण तो होता ही होता है, और उसी समय वो उत्तर प्रकृति रूप भी हो जाता है, यानी कालांतर के बाद होगा ये बात नहीं है। इस प्रकार संचित होते होते यानी हर समय बनते समय वो विभाजित होता चला जाता है, और विभाजित होने पर संचित होता है, जब तक खिर नहीं जाएगा तो सत्ता में पड़ा रहता है। तो इस प्रकार संचित होते होते मोनी की उत्तर प्रकृतियों में जिस क्रम से संचित द्रव्य रहता है उसका विभाग क्रम यहाँ बतलाया है।
यह उत्तर प्रकृति जो बताई है वहाँ पे परमाणु या अलग टाइप के हैं कि मौल्य की एक ही प्रकृति उसमें इसमें सब में विभाजन हो जाता है। हाँ। नहीं मिथ्यात्व
देखो, का अलग होता हमने है। देखा कारमान वर्गणा जो बनती है। हाँ। बनती है ने कर्म रूप परिणमित होती है।
हाँ।
तो कोई ज्ञानावरण रूप होती है, कोई दर्शनावरण रूप होती है, तो कारमान वर्गणा ही अलग अलग टाइप की होती है।
हाँ, तो ग्रहण ही वही टाइप से होगा।
हाँ, वही उसी टाइप से ग्रहण भी होता है, उसी टाइप से उसका परिणमन होता है। जैसे जीव के परिणाम है उसी टाइप के कर्म परमाणुओं का उसमें परिणमित होगा। जैसे ऊपर के गुण स्थानों में मिथ्या तो बनता ही नहीं है। हाँ। क्यों? वहां जीव के ऐसे परिणाम है कि वो मिथ्या तो रूप परिणमने वाले कर्म कारमाण वर्गणा वहां ग्रहण ही नहीं होती है।
हाँ।
यानी उसका परिणमन ही नहीं होगा वहां। ख्याल में आती है ना बात? वहां वो वर्गणा नहीं होती है, वो बात नहीं। जीव के प्रदेशों में तो अनंत अनंत वर्गणाएं पड़ी है। अब हम अपने हमारे निमित्त से जो परिणमित हो रही है, और यहाँ जो निगोद है अन्यत्र रस जीव इस शरीर के आधार से रहते हैं, उनके निमित्त से अपनी और अलग अलग परिणमित हो रही है। उसी प्रदेशों में वे भी है ना। हाँ, सिद्ध जहाँ विराजमान है वहां भी खचोखच भरी है, और वहां तो सूक्ष्म पांचों जीव रहते हैं, तो उनके निमित्त से वहां की कारमान वर्गणाएं परिणमित हो रही है। परंतु उस प्रदेश में रहने से कुछ संबंध नहीं है। उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध हो तो हम कहेंगे ये जीव के कर्म है। मात्र एक क्षेत्रावगाही है, वो संबंध पूर्ता नहीं है। ऐसा है कोई मुनि में नौकर है, उसके खिस्से में भरे हैं लाखों रुपए, मुर्शेद के उसके नहीं है। तो ये विभाग क्रम यहाँ बतलाया है, अब यहीं लिखते हैं हम। हाँ, विशेषार्थ से ले लेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। दोषी साहब,